प्रेमशंकर की कृषि शाला अब नगर के रमणीय स्थलों की गणना में थी। यहाँ ऐसी सफाई सजावट थी कि प्रायः रसिक गण सैर करने आया करते। यद्यपि प्रेमशंकर केवल उसके प्रबंधकर्ता थे, पर वस्तुतः स्वामियों के भक्ति और पूर्ण विश्वास ने उन्हें उसका स्वामी बना दिया था। अब अपने इच्छानुसार नई नई फसलें पैदा करते, नाना प्रकार की परीक्षाएँ करते, पर कोई जरा भी न बोलता। और बोलता ही क्यों, जब उनकी कोई परीक्षा असफल न होती थी। जिन खेतों में मुश्किल से 5-7 मन उपज होती थी, वहाँ अब 15-20 मन का औसत पड़ता था। उस पर बाग की आमदनी अलग थी। इन्हीं 4 सालों में कलमी, आम, बेर, नारंगी आदि के पेड़ों में फल लगने शुरू हो गए थे। साग भाजी की पैदावार घाटे में थी। प्रेमशंकर में व्यावसायिक संकीर्णता छू तक न गई थी। कुछ सज्जन यहाँ आ जाते, उन्हें फूल फलों की डाली अवश्य भेंट की जाती थी। प्रेमशंकर की देखा देखी हाजीपुर वालों ने भी अपने जीवन का कुछ ऐसा डौल कर लिया था कि उनकी सारी आवश्यकताएँ उसी बगीचे से पूरी हो जाती थी। भूमि का 8वां भाग कपास के लिए अलग कर लिया गया था। अन्य प्रांतों में उत्तम बीज मंगाकर बोए गए थे। गांव के लोग स्वयं सूत काट लेते थे और गांव का ही कोरी उसके कपड़े बुन देता था। नाम उसका मस्ता था। पहले वह जुआ खेलता था और कई बार चोरी में पकड़ा गया था, लेकिन अब अपने श्रम से गांव में भले आदमियों में गिना जाता है। प्रेमशंकर के उद्योग से आसपास के गाँव में भी कपास की खेती होने लगी थी और कितने ही कोरियों और जुलाहों के उजड़े हुए घर आबाद हो गए थे। देहातों के मुकदमेबाज, जमींदार और किसान बहुधा ऐसी जगह ठहरा करते थे। यहाँ इन्हें ईंधन, साग भाजी, नमक, तेल के लिए पैसे खर्च न करने पड़ते थे। प्रेमशंकर उनसे खूब बातें करते और उन्हें अपने बगीचे की सैर कराते। साधु संतों का तो मानो यह अखाड़ा ही था। 2-4 मूर्तियाँ नित्य ही पड़ी रहती थी। न जाने उस भूमि में क्या बरकत थी कि इतनी आतिथ्य सेवा करने पर भी किसी पदार्थ की कमी न थी। हाजीपुर वाले तो उन्हें देवता समझते थे और अपने भाग्य को सराहते थे कि ऐसे पुण्यात्मा ने उन्हें उबारने के लिए यहाँ निवास किया। उनके सदैव उदार सरल स्वभाव ने मस्ताकोरी के अतिरिक्त गाँव के कई कुचरित्र मनुष्यों का उद्धार कर दिया था। भोला अहिर, जिसके मारे खलिहान में अनाज न बचता था, दमड़ी पासी, जिसका पेशा थी लठैती था, अब गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार किसान थे। प्रेमशंकर अक्सर कृषकों की आर्थिक दुरावस्था पर विचार करते थे। अन्य अर्थशास्त्रवेत्ताओं की भांति वह कृषकों पर फिजूल खर्ची, आलस्य, अशिक्षा या कृषि विधान से अनभिज्ञता का दोष लगाकर इस प्रश्न को हल न करते थे। वह परोक्ष से कहा करते थे कि मैं कृषकों को शायद ही कोई ऐसी बात बता सकता हूँ जिसका उन्हें ज्ञान न हो। परिश्रमी तो इनसे कोई संसार में न होगा। मित्रव्ययिता में, आत्मसंयम में, गृह प्रबंधन में वे निपुण हैं। उनकी दरिद्रता का उत्तरदायित्व उन पर नहीं बल्कि उन परिस्थितियों पर है जिनके अधीन उनका जीवन व्यतीत होता है। और वह परिस्थितियां क्या हैं? आपस की फूट, स्वार्थपरता और एक ऐसी संस्था का विकास जो उनके गाँव की बीड़ी बनी हुई। लेकिन जरा और विचार कीजिए तो यह तीनों टहनियाँ एक ही शाखा से फूटी हुई प्रतीत होंगी और यह वही संस्था जिसका अस्तित्व कृषकों के रक्त पर अवलंबित है। आपस में विरोध क्यों? दुर्वस्थाओं के कारण, उनकी जिस इस वर्तमान शासन से सृष्टि की है। और उस पर प्रेम और विश्वास क्यों नहीं है? इसलिए कि यह शासन इन सद्भावों को अपने लिए घातक समझता है और उन्हें पनपने नहीं देता। इस परस्पर विरोध का सबसे दुखजनक फल क्या है? भूमि का क्रमशः अत्यंत अल्प भागों में विभाजित होते जाना और उसके लगान की अपरिमित वृद्धि। प्रेमशंकर इस शासन के सुधार को तो मानव शक्ति से परे समझते थे, लेकिन भूमि के बंटवारे का रोकना उन्हें साध्य जान पड़ता था। और यद्यपि किसी आंदोलन में अगुआ बनना उन्हें पसंद न था, किंतु इस विषय में वह इतने उत्सुक थे कि समाचार पत्रों में अपने मंतव्यों को प्रकट करने से न रुक सके। इसमें उनका उद्देश्य केवल यह था कि कोई मुझसे अधिक अनुभवशील, कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति इस प्रश्न को अपने हाथ में ले ले। एक दिन वह कई सहृदय मित्रों के साथ बैठे हुए इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे कि एक सज्जन ने कहा, यदि आपका विचार है कि यह प्रथा कानून से बंद की जा सकती है तो आपकी भ्रांति है। इस विषयुक्त पौधे की जड़ें मनुष्य के हृदय में है और जब तक इसे हृदय से खोद कर न निकालिएगा, यह इसी प्रकार फूलता फलता रहेगा। प्रेमशंकर, कानून से कुछ न कुछ सुधार तो हो ही सकता है। इस पर उन महाशयों ने जोर देकर कहा, कदापि नहीं, बल्कि स्वार्थ प्रत्यक्ष रूप से बस स्फुटित होने का अवसर न पाकर और भी भयंकर रूप धारण कर लेगा। इस पर एक किसान बंटवारे की दरख्वास्त करने कचहरी से लौटा था, जो आज यहीं ठहरा हुआ था। बोल उठा, कहूँ कुछ न हो, हम तो अपने लोगन के पीछे पीछे चलित हैं। अब आपे लोगन में भाई भाई में निवाह नहीं हो सकत है तो हमारे कस होई। आपका नारायण सब कुछ दिए हैं, मुदा अपने भाई से अलग रहत हो। ये शंकर शब्द प्रेमशंकर के हृदय में तीर के समान चुभ गए। सिर झुका लिया, मुख श्रीमलिन हो गई। मित्रों ने कृषक की ओर तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखा। यह एक जगत व्यापार था। यहाँ व्यक्तियों को खींचना नितान्त न्याय विरुद्ध था और वह अक्खड़ देहाती सभ्यता के रहस्यों को न जाने। मुंह में जो बात आई वो कह डाली। एक महाशय ने कहा, निरे गवार, जरा भी तमीज नहीं। दूसरे महाशय बोले, अगर इतना ही ज्ञान होता तो देहाती क्यों कहलाते? न अवसर का ध्यान, न औचित्य का विचार, जो कुछ उठपटांग मुंह में आया बकटाला। बेचारे किसान को जब अब मालूम हुआ कि मुंह में से कोई अनुचित बात निकल गई, लज्जित होकर बोला, साहब मैं गवार मनई, ये सब फेर फार का जानो, जो भूल चूक हो गई माफ़ की जाए। प्रेमशंकर, नहीं नहीं तुमने कोई अनुचित बात नहीं कही, मेरे लिए इस स्पष्ट कथन की आवश्यकता थी, तुमने अच्छी शिक्षा दे दी। कोई संदेह नहीं कि शिक्षित जनों में भी विरोध और वैमनस्य का उतना ही प्रकोप है जितना अशिक्षित जनों में है, और मैं स्वयं इस विषय में दोषी हूँ, मुझे किसी को समझाने का अधिकार नहीं। मित्रगण कुछ देर तक और बैठे रहे, लेकिन प्रेमशंकर कुछ ऐसे दब गए कि फिर जबान ही न खुली, अंत में सब सब एक एक करके चले गए। सूर्यास्त हो रहा था, प्रेमशंकर घोर चिंता की दशा में अपने झोपड़े के सामने टहल रहे थे। उनके सामने अब यह समस्या थी कि ज्ञान शंकर से कैसे मेल हो, वह जितना ही विचार करते थे उतना ही अपने को दोषी पाते थे, यह सब मेरे ही करनी है। जब असामियों से उनकी लड़ाई छनी हुई थी तो मुझे उचित नहीं था कि असामियों का पक्ष ग्रहण करता, माना कि ज्ञान शंकर का अत्याचार था, ऐसी दशा मुझे अलग रहना चाहिए था या उन्हें भ्रातृवत समझना चाहिए था, यह तो मुझसे न हुआ, उल्टे उन्हीं से लड़ बैठा। माना कि उनके और मेरे सिद्धांतों में घोर अंतर है, लेकिन सिद्धांत विरोध परस्पर भ्रातृ प्रेम को क्यों दूषित करें। यह भी माना कि जब से मैं आया हूँ उन्होंने मेरी अवहेलना की है, यहाँ तक कि मुझे पत्नी प्रेम से भी वंचित कर दिया, पर मैंने भी तो कभी उनसे नहीं मिलने की, उनके कटु व्यवहार को भूल जाने की, उनके प्रिय अप्रिय बातों को सह लेने की चेष्टा नहीं की। वह मुझसे एक अंगूठ खिसके तो मैं उनसे हाथ भर हट गया। सिद्धांत प्रेता का यह आशा नहीं कि आत्मीय जनों में से विरोध कर लिया जाए, सिद्धांतों को मनुष्य से अधिक मान्य समझा समझना अक्षम्य है, उनके हृदय को अपनी तरफ से साफ करने का यह अच्छा अवसर है। संध्या हो गई थी, ज्ञानशंकर अपने सिरों में बंगले के सामने मौलवी इजाद हुसैन के साथ बैठे बातें कर रहे थे। मौलवी साहब ने सरकारी नौकरी में मनोनुकूल सफलता न देख इस्तीफा दे दिया था और कुछ दिनों से जाति सेवा में लीन हो गए थे। उन्होंने अंजुमन इत्तेहाद नाम की एक संस्था खोल ली थी, जिसका उद्देश्य हिंदू मुसलमानों में परस्पर प्रेम और मैत्री बढ़ाना था। यह संस्था चंदे से चलती थी और इसी हेतु से सैयद साहब यहाँ पधारे थे। ज्ञानशंकर ने कहा, मुझे दिन दिन तजर्बा हो रहा है कि जमींदारी करने के लिए बड़ी शक्ति की ज़रूरत है। जमींदार नज़र नजराना हरी बेगार डाण बात सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन लगान तो नहीं छोड़ सकता, वह भी अब बगैर अदालती कार्रवाई के नहीं वसूल होता। इजाद हुसैन, जनाब बजा फरमाते हैं, लेकिन गुलाम ने ऐसे रईसों को भी देखा है जो अभी कभी अदालत के दरवाजे तक न गए। जहाँ किसी आसामी ने सरकशी की उसकी मरम्मत कर दी, और लुत्फ यह कि कभी डंडे या हंटर से काम नहीं लिया। गर्मी में झुलसती हुई धूप और जाड़े में बर्फ असर ठंडा पानी, बस इसी लटके से उनकी सारी मालगुजारी वसूल हो जाती थी है। मई और जून की धूप जरा देर सिर पर लगी और आसामी ने कमर ढीली की। ज्ञानशंकर, मालूम नहीं ऐसे आसामी कहाँ हैं, यहाँ तो ऐसे बदमाशों से पाला पड़ा है जो बात बात पर अदालत का रास्ता लेते हैं। मेरे मौजे को देखिए कैसा तूफान उठ गया है, महज चरावर को रुक देने के पीछे। इतने में डॉक्टर इरफान अली बार एट लॉ की मोटर आ पहुंची। ज्ञानशंकर ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर, अब की आपने बड़ा इंतजार करा है, मैं तो आपसे मिलने के लिए गोरखपुर आने वाला था। ज्ञानशंकर, रियासत का काम इतना फैला हुआ है कि कितना ही समेटू नहीं समटता। डॉक्टर, आपको मालूम तो होगा यहाँ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की जगह खाली है, अब तो आप सिंडिकेट में आ गए हैं। ज्ञानशंकर, जी हाँ, सिंडिकेट में तो लोगों ने ज़बरदस्ती घर धर घसीटा, लेकिन यहाँ रियासत के कामों से फुर्सत कहाँ की उधर तवज्जो करूँ। कुछ कागजात गए थे लेकिन मुझे उनके देखने का मौका ही न मिला। डॉक्टर दास के चले जाने से जगह खाली हो गई है और मैं इसका उम्मीदवार हूँ। ज्ञानशंकर ने आश्चर्य से कहा, आप? डॉक्टर, जी हाँ, अब मैंने यही फैसला किया कि मेरी तबीयत रोज़ बरोज वकालत से बेजार होती जाती है। ज्ञानशंकर, आखिर क्यों? आपकी वकालत में 3-4 हज़ार से कम की नहीं वो काम की खुशामद तो नहीं खलती है, या कॉन्सेंस का ख्याल है? डॉक्टर, जी नहीं, सिर्फ इसलिए कि इस पेशे में इंसान की तबीयत बेजा जस्परस्ती की तरह मायल हो जाती है। कोई वकील कितना भी हक शिनास क्यों ना हो, उसे हमदर्दी और इंसानियत से वह खुशी नहीं होती जो एक शरीफ आदमी को होनी चाहिए। इसके खिलाफ आपस की लड़ाइयों और दगाबाजियों से एक खास दिलचस्पी हो जाती है, वह एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है जो लतीफ़ जज्बात से खाली है। मैं महीनों से इसी कशमकश में पड़ा हुआ हूँ और अब यही इरादा है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस पेशे को सलाम करूँ। यही बातें हो रही थी कि फैजुल और करतार ने सामने आकर सलाम किया। ज्ञानशंकर ने पूछा, कहो खैरियत तो है? फैजुल, हुजूर खैरियत क्या कहें, रात को किसी ने खां साहब को मार डाला। इजाद हुसैन और इरफान अली चौक पड़े, लेकिन ज्ञानशंकर लेश मात्र विचलित न हुए, मानो यह सब बात पहले ही मालूम थी। बोले, तुम लोग कहाँ थे, कहीं सैर सपाटे करने चले थे या अफीम की पिनक में पड़े हुए थे? फैजुल, हजूर थे तो चौपाल में ही, पर किसी को क्या खबर की वारदात होगी। ज्ञान, क्यों खबर क्यों न थी, जो आदमी सांप को पैरों से कुचल रहा हो उसे यह मालूम होना चाहिए कि सांप के दांत जहरीले होते हैं। जमींदारी करना सांप को नचाना है। वह सपेरा नाड़ी है जो सांप को काटने का मौका दे। खैर, कादिर का कुछ पता चला है? जो जी हाँ, वही मनोहर अहिर है। उसने सवेरे ही थाने में जाकर एक बाल कर दिया। दोपहर को थानेदार साहब आ गए और तहकीकात कर रहे हैं। खान साहब का तार हजूर को मिल गया था। जिस दिन खान साहब ने चरावर को रोकने का हुक्म दिया था, उसी दिन गांव वालों में एका हो गया। खान साहब ने घबरा कर हजूर को तार दिया। मैं 3 बजे तार घर से लौटा तो गांव में मुकदमा लड़ने के लिए चंदे का गुट हो रहा था। रात को यह वारदात हो गई। अकस्मात प्रेम शंकर लाला प्रभा शंकर के साथ आ गए। ज्ञान शंकर को देखते ही प्रेम शंकर टूट कर उनसे गले मिले और पूछे, कब आए, सब कुशल है ना? ज्ञान शंकर ने रुखाई से उत्तर दिया, कुशल का हाल इन आदमियों से पूछिए जो अभी लखनपुर से आए हैं। गाँव वालों ने गौस खां का काम तमाम कर दिया। प्रेम शंकर स्तंभित हो गए। मुँह से निकला, अरे यह कब? ज्ञान, आज ही रात को। प्रेम, क्या बात है? ज्ञान, गांव वालों की बदमाशी और सरकशी के सिवा और क्या बात हो सकती है? मैंने चराबर को रोकने का हुक्म दिया था, वहां एक बाग लगाने का विचार था, बस इतना बहाना पाकर सब खून खच्चर फरुद्दत हो गए। प्रेम, कातिल का कुछ पता चला? ज्ञान, अभी तो मनोहर ने थाने में जाकर एक बाल किया है। प्रेम, मनोहर तो बड़ा सीधा और गंभीर पुरुष है। ज्ञान व्यंग से, जी हाँ, देवता था। डॉक्टर साहब ने मार्मिक भाव से देखकर कहा, यह किसी एक आदमी का फेल हरगिज नहीं है। ज्ञान, ये मेरा भी ख्याल है। मनोहर की इतनी मचाल नहीं कि वह अकेला ही यह काम कर सके। निसंदेह सारा गांव मिला हुआ है। मनोहर का सबने तबेले का बंदर बना रखा है। देखिए थानेदार की तहकीकात का क्या नतीजा होता है। कुछ भी हो, अब मैं मौजे को वीरान करके ही छोड़ूंगा। क्यों फैजू, तुम्हारा क्या ख्याल है? मनोहर अकेले यह काम कर सकता है? फैजू, नहीं हजूर, 60 बरस का बुढ़ा भला क्या कर खा कर हिम्मत करता? और कोई चाहे उसका मददगार न हो, लेकिन उसका लड़का तो जरूर ही साथ रहा होगा। करतार, वह बुढ़ा है तो क्या, बड़े जीवट का आदमी है। उसके सिवा गांव में किसी का इतना कलेजा नहीं है। ज्ञान, तुम गंवार आती हो, इन सब बातों को क्या समझोगे? तुम्हें जो भंग का गोला चाहिए। डॉक्टर साहब, मुआवले में मुद्दई तो सरकार होगी, लेकिन आप भी मेरी तरफ से पैरवी कीजिए। मैंने फैसला कर लिया है कि गांव के किसी बालिग आदमी को बेदाग न छोड़ूंगा। प्रेम शंकर ने दबी जबान से कहा, अगर तुम्हें विश्वास हो कि यह आदमी का काम है तो सारे गाँव को समेटना उचित है। ऐसा न हो कि गेहूं के साथ घुन भी पीस जाए। ज्ञान शंकर क्रुद्ध होकर बोले, बहुत अच्छा हो अगर आप इस विषय में अपने सत्य और न्याय के नियमों का स्वांग न रचे। यह उन्हीं को बरकत है कि आज इन दुष्टों को इतना साहस हुआ है। आप मुझे साफ साफ कहने पर मजबूर कर रहे हैं। यह सब आपके बल पर कूद रहे हैं। आपने प्रत्येक अवसर पर मेरे विपक्ष में उनकी सहायता की है, उनसे भाईचारा किया है और उनके सिर पर हाथ रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके इसी भ्रातृभाव ने उनके सिर फिरा दिए हैं। मेरा भय उनके दिल से जाता रहा। आपके सिद्धांतों और विचारों को मैं आदर करता हूं, लेकिन आप कड़वी नीम को दूध से सींच रहे हैं और आशा करते हैं कि मीठे फल लगेंगे। ऐसे को पात्रों के साथ ऊंचे नियमों का व्यवहार करना दीवान के हाथ में मशाल दे देना है। प्रेम शंकर ने फिर जबान न खोली और न सिर उठाया। लला प्रभा शंकर को ये बातें ऐसी बुरी लगी कि वह तुरंत उठकर चले गए, लेकिन प्रेम शंकर आत्मपरीक्षा में मौन मूर्तिवत बैठे रहे। दीन देहातियों के साथ साधारण सज्जनता का बर्ताव करने का परिणाम ऐसा भयंकर होगा, यह एक बिल्कुल नया अनुभव था। केवल एक आदमी की जान ही नहीं गई, वरन और कितने ही प्राणों का बलिदान होने की आशंका थी। भगवान, उन गरीबों पर दया करो। मैंने सच्चे हृदय से उनकी सेवा नहीं की। द्वेष का भाव मुझे प्रेरित करता रहा। मैं ज्ञान शंकर को नीचा दिखाना चाहता था। यह समस्या उसी द्वेष भाव का दंड है। क्या एक लखनपुर ही अपने जमींदार के अत्याचारों से पीड़ित है? ऐसा कौन सा इलाका जो जमींदार के हाथों रक्त के आंसू न बहा रहा हो? तो लखनपुर वालों के ही प्रति मेरी सहानुभूति क्यों इतनी प्रचंड हो गई? और फिर से अत्याचार, क्या इससे पहले न होते थे? यह तो आए दिन की बात होता रहता था, लेकिन कभी असामियों को चूं करने की हिम्मत न पड़ती थी। इस बार क्या वह क्यों मारकाट पर उद्दत हो गए? इन शंकाओं को उन्हें एक ही उत्तर मिलता था और वही उस उत्तरदायित्व के भार को और कुर्तर बना देता था। हाय, मैंने कितने प्राणों को अपनी ईर्ष्याग्नि के कुंड में झोंक दिया। अब मेरा कर्तव्य क्या है? क्या यह आग लगाकर दूर से खड़ा तमाशा देखूं? ये सर्वथा निंद्य है। अब तो इन अभागों की यथायोग्य सहायता करनी पड़ेगी। चाहे ज्ञान शंकर को कितना ही बुरा लगे, इसके सिवा मेरे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रेम शंकर इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि माया शंकर ने आकर कहा, चाचा जी, अम्मा कहती हैं अब तो बहुत देर हो गई, हाजीपुर कैसे जाइएगा? यही भोजन कर लीजिए और आज यहीं पर रह जाइए। प्रेम शंकर शोक में विचारों के तरंग में भूल गए कि अभी मुझे हाजीपुर लौटना है। माया को प्यार करके बोले, नहीं बेटा, मैं चला जाऊँगा, अभी ज़्यादा रात नहीं गई है, यहाँ रह जाऊँ तो बड़ा हर्ज होगा। यह कहकर वो उठ खड़े हुए, ज्ञान शंकर की ओर करुणा नेत्रों से देखा और बिना कुछ कहे चल दिए। ज्ञान शंकर ने उनकी तरफ ताका भी नहीं। उनके जाने के बाद डॉक्टर महोदय बोले, मैं इनकी बड़ी तारीफ सुना करता था, पर पहली मुलाकात तबीयत आसुदा हो गई, कुछ खुर्द से मालूम होते हैं। ज्ञान, बड़े भाई हैं, उनकी शान में क्या कहूँ। कुछ दिनों अमेरिका क्या रह आए हैं, गोया हक और इंसाफ का ठेका ले लिया है। हालांकि अभी तक अमेरिका में भी वह ख्यालात अमन के मैदान में कुछ दूर हैं। दुनिया में इन ख्यालों की चर्चा हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगी। देखना सिर्फ यह है कि वह कहाँ तक अमल में लाए जा सकते हैं। मैं खुद इन उसूलों का कायल हूँ, पर मेरे ख्याल में अभी बहुत दिनों तक इस ज़मीन में यह बीज सरसब्ज नहीं हो सकता। इसके बाद कुछ देर तक इस दुर्घटना के संबंध में बातचीत होती रही। जब डॉक्टर साहब और इजाद हुसैन चले गए, तब ज्ञान शंकर घर में जाकर बोले, देखा भाई साहब ने लखनपुर में क्या गुल खिलाया। अभी खबर आई है कि कौस खाकर लोगों ने मार डाला। दोनों स्त्रियाँ हक्के बक्के होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ज्ञान शंकर ने फिर कहा, वह वर्षों से वहाँ जा जाकर आसामियों को न जाने क्या कहते थे, न जाने क्या सिखाते थे, जिसका नतीजा यह निकला है। मैंने जब इनके यहाँ आने जाने की खबर पाई थी तो इसी वक्त मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने उनसे विनय की थी कि आप गंवारों को अधिक सिर न चढ़ाएं। उन्होंने वचन भी दिया था उनमें कोई संबंध न रखूंगा, लेकिन अपने आगे किसी को समझते ही नहीं। मुझे भय है कि कहीं इस मामले में वह भी न फंस जाए। पुलिस वाले एक कट्टर होते हैं और किसी न किसी मोटे आसामी को जरूर फंसेंगे। गंवालों पर वहाँ सख्ती की सब के सब खुल पड़ेंगे और सारा अपराध भाई साहब को सिर डाल देंगे। श्रद्धा ने ज्ञान शंकर की ओर कातर नेत्रों से देखा और उसे झुका लिया। अपने मन के भाव को प्रकट न कर सकी विद्या ने कहा, तुम जरा थानेदार के पास जाकर क्यों नहीं चले जाते, जैसे बने उन्हें राजी कर लो। ज्ञान, हाँ कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक छोटे आदमी को खुशामद करना, उसके नखरे उठाना अपने अपमान की बात है, भाई साहब को ऐसा न समझता था। श्रद्धा ने सिर झुकाए हुए सर्वोश्वर से कहा, पुलिस वाले उन पर जो अपराध लगाएं वैसे आदमी नहीं है कि गाँव वालों को भकाते फिरे, बल्कि अगर गांव वालों की नीयत उन्हें पहले मालूम हो जाती तो वह नौबत ही ना आती। तुम्हें थानेदार की खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी रक्षा आप कर सकते हैं। विद्या, मैं तुम्हें बार बार समझाती आती थी कि देहातियों से राड न बनाओ, बिल्ली भी भागने की राह नहीं पाती तो शेर हो जाती है, लेकिन तुमने कभी कान न दी। ज्ञान, कैसे भी सिर पैर की बातें करती हो, मैं इन टुकड़ गुजे किसानों से दबता फिरूँ, जमींदार न हुआ कोई चरकटा हुआ, उनके मजाल थे कि मेरे मुकाबले में खड़े हो जाते। हाँ, जब अपने घर में आग लगाने वाले मौजूद हों तो जो कुछ न हो जाए वह थोड़ा है। मैं एक नहीं 100 बार कहूँगा कि अगर भाई साहब ने इन्हें सिर न चढ़ाया होता तो आज इनके हौसले इतने न बढ़ते। विद्या, दबी जमान से, सारा शहर जिसकी पूजा करता है उसे तुम घर में आग लगाने वाला कहते हो। ज्ञान, यही लोक सम्मान तो इन सारे उपद्रवों का कारण है। श्रद्धा और ज्यादा नासूर से कूट कर अपने कमरे में चली गई। तब ज्ञान शंकर ने कहा, मुझे तो इनके फंसने में जरा भी संदेह नहीं है। विद्या, तुम अपनी ओर से बचाने में कोई बात उठा न रखना, यह तुम्हारा धर्म है। आगे विधाता है, जो लिखा है वह तो होगा ही। ज्ञान, भाभी की तबीयत का कुछ भी रंग दिखाई देता है। विद्या, तुम उनका स्वभाव जानते नहीं, वह चाहे तो दादाजी के साय में ही से भी भागे पर उनके नाम पर जान देती है, हृदय से उनकी पूजा करती है। ज्ञान, इधर भी चलती है उधर भी। विद्या, इधर लोग लाल से चलते उधर हृदय उधर ही है। ज्ञान, तो फिर मुझे कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। विद्या, ईश्वर के लिए ऐसी बातें मुझसे न किया करो। श्रद्धा की बातों से पहले तो ज्ञान शंकर को कुछ शंका हुई, लेकिन विचार करने पर यह शंका निवृत्त हो गई, क्योंकि इस मामले में प्रेम शंकर का अभियुक्त हो जाना अवसंभावी था। ऐसी अवस्था में श्रद्धा का निर्बल क्रोध से ज्ञान शंकर को कोई हानि न हो सकती थी। ज्ञान शंकर ने निश्चय किया था कि इस विषय में मुझे हाथ पर हिलाने की कोई जरूरत नहीं, सारी व्यवस्था मेरे इच्छानुकूल है। थानेदार सर स्वार्थवश इस मामले को बढ़ाएगा, सारे गाँव को फंसाने की चेष्टा करेगा और इसका सफल होना असंदिग्ध है। गाँव में कितना भी एका हो पर कोई न कोई मुखबिर निकल ही जाएगा। थानेदार ने लखनपुर के जमींदार के दफ्तर की जांच पड़ताल अवश्य की ही होगी और वहाँ मेरे ऐसे 2-4 पत्र अवश्य निकल जाएंगे जिनसे गांव वालों के साथ भाई साहब की सहानुभूति और सदिच्छा सिद्ध हो सके। मैंने अपने कई पत्रों में गौस खां को लिखा है कि भाई साहब का यह व्यवहार मुझे पसंद नहीं। हाँ, एक बात हो सकती है, संभव है कि गाँव वाले रिश्वत देकर गला छुड़ा लें और थानेदार अकेले मनोहर का चालान करें, लेकिन ऐसे संगीन मामले में थानेदार को इतना साहस नहीं हो सकता, वह यथासाध्य इस घटना को महत्वपूर्ण सिद्ध करेगा। भाई साहब के से अधिकारी वर्ग उनके निर्भय लोकवाद के कारण पहले से ही बदगुमान हो रहे हैं। सब इंस्पेक्टर उन्हें इस षड्यंत्र का प्रेरक साबित करके अपना रंग जरूर जमाएगा। अभियोग सफल हो गया तो उसकी तरक्की भी होगी, पारितोषिक भी मिलेगा। गाँव वाले कोई बड़ी रकम देने के सामर्थ्य नहीं रखते और थानेदार छोटी रकम के लिए अपनी आशाओं को मिट्टी में न मिलाएगा। बंधु विरोध का विचार मिथ्या है, संसार में सब अपने लिए ही जीते और मरते हैं। भावुकता के फेर में पड़कर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना हास्यजनक है। ज्ञान शंकर का अनुमान अक्षरशः सत्य निकला। लखनपुर के प्रयास सभी बालिग आदमियों का चलान हुआ, विशेषकर शाह को टैक्स की धमकी ने भेदिया बना दिया। जमींदारी दफ्तर का भी निरीक्षण हुआ। एक सप्ताह पीछे हाजीपुर में प्रेम शंकर की खाना तलाशी हुई और वह हिरासत में ले लिए गए। संध्या का समय था। ज्ञान शंकर मुन्नु के साथ लिए हवा खाने जा रहे थे कि डॉक्टर इरफान अली ने आकर यह समाचार कहा। ज्ञान शंकर के रोए खड़े हो गए और आंखों में आंसू भर आए। एक क्षण के लिए बंधु प्रेम ने क्षुद्र भावों को दबा दिया, लेकिन ज्यों ही जमानत का प्रश्न सामने आया यह आवेग शांत हो गया। घर में खबर हुई तो कोहराम मच गया। श्रद्धा मूर्छित हो गई, बड़ी बहू तसल्ली देने आई। मन्नू भी भीतर चला गया और माँ के गोद में सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगा। प्रेमशंकर शहर से कुछ ऐसे अलग रहते थे कि उनका शहर के बड़े लोगों से बहुत कम परिचय था। वह रईसों से बहुत कम मिलते जुलते थे। कुछ विद्वतजनों ने पत्रों में उनके कृषि संबंधी लेख अवश्य देखे थे और उनकी योग्यता के कायल थे, किंतु उन्हें झक्की समझते थे। उनके सच्चे शुभचिंतकों में अधिकांश कॉलेज के नवयुवक दफ्तरों के कर्मचारी या देहातों के लोग थे। उनकी हिरासत में आने की खबर पाते ही हजारों आदमी एकत्र हो गए। प्रेमशंकर को पीछे पीछे पुलिस स्टेशन तक गए, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा ना था जो जमानत देने का प्रयत्न कर सकता। लाला प्रभा शंकर ने सुना तो उन्मत्त की भांति दौड़े वो ज्ञान शंकर के पास आकर बोले, बेटा तुमने सुना ही होगा, कुल मर्यादा मिट्टी मिल गई। भैया की आत्मा को इस समय कितना दुख हो रहा होगा। जिस मान प्रतिष्ठा के लिए हमने जायदादें बर्बाद कर दी वह आज नष्ट हो गई। हाय, भैया जीवन पर्यंत कभी अदालत के द्वार पर नहीं गए। घर में चोरियां हुई, लेकिन कभी थाने में इत्तला तक नहीं की गई कि तहकीकात होगी और पुलिस दरवाजे पर आएगी। आज उन्हीं का प्रिय पुत्र, क्यों बेटा जमानत न होगी। ज्ञान शंकर इस कातर अधीरता परुष्ट होकर बोले, मालूम नहीं, हाकिमों की मर्जी पर है। प्रभा, तो जाकर हाकिमों से मिलते क्यों नहीं, कुछ तुम्हें भी अपनी इज्जत की फिक्र है या नहीं। ज्ञान, कहना बहुत आसान है, करना कठिन है। प्रभा, भैया कैसी बातें करते हो, यहाँ के हाकिमों में तुम्हारा कितना मान है, बड़े साहब तक तुम्हारी कितनी खातिर करते हैं। यह लोग किस दिन काम आएंगे, क्या इसके लिए कोई दूसरा अवसर आएगा। ज्ञान, अगर आपका यह आशय कि मैं जाकर हाकिमों को खुशामद करूँ, उनसे रियायत की याचना करूँ, तो यह मुझसे नहीं हो सकता। वह उनके खोदे हुए गढ़े में नहीं गिरना चाहता। मैं किसी दावे पर उनकी जमानत कर सकता हूँ, जब मैं जानता हूँ कि अपने टेक नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी साथ ले डूबेंगे। प्रभाशंकर ने लंबी सांस भरकर कहा, हाँ भगवान, यह भाई भाइयों का हाल है। मुझे न मालूम था कि तुम्हारा हृदय इतना कठोर है। तुम्हारा सगा भाई आफत में पड़ा है और तुम्हारा कलेजा जरा भी नहीं पसीजता। खैर, कोई चिंता नहीं, अगर मेरे सामर्थ्य से बाहर नहीं है तो मेरे भाई का प्यारा पुत्र मेरे सामने यूँ अपमानित न होने पाएगा। ज्ञान शंकर को अपने चचा की दरियादृता पर क्रोध आ रहा था। वह समझते थे कि केवल मेरी अवहेलना करने के लिए वह इतने प्रगल्भ हो रहे हैं। इनकी इच्छा है कि मुझे भी अधिकारियों की दृष्टि में गिरा दें, लेकिन प्रभाशंकर बनावटी भावों के मनुष्य न थे। वह कुल प्रतिष्ठा पर अपने प्राण तक समर्पण कर सकते थे। उनमें यह गौरव प्रेम था जो स्वयं उपवास करके आतिथ्य सत्कार को अपना सौभाग्य समझता था, और जो अब हाँ शोक इस देश से लुप्त हो गया है। धन उनके विचार में केवल मान मर्यादा की रक्षा के लिए था, भोग विलास और इंद्रिय सेवा के लिए नहीं। उन्होंने तुरंत जाकर कपड़े पहने, चोंगा पहना, अमामा बांधा और एक पुराने रईस के वेश में मजिस्ट्रेट के पास जा पहुंचे। रात के 8 बज चुके थे, इसकी जरा भी परवाह न की। साहब के सामने उन्होंने जितनी दीनता प्रकट की, जितने विनीत शब्दों में अपनी संकट कथा सुनाई, जितनी नीच खुशामद की, जिस भक्ति से हाथ बांध कर खड़े हो गए, अमामा उतार कर साहब के पैरों पर रख दिया और रोने लगे। अपने कुल मर्यादा की जो गाथा गई और उसकी राजभक्ति के जो प्रमाण दिए, उसे एक नव शिक्षित युवक अत्यंत लज्जाजनक ही नहीं बल्कि हास्यास्पद समझता। लेकिन साहब पसीज गए, जमानत ले लेने का वादा किया, पर रात हो जाने के कारण उस वक्त कोई कार्रवाई न हो सकी। प्रभाशंकर यहाँ से निराश लौटे। उनकी इच्छा के प्रेमशंकर हिरासत में रात को न रहें पूरी न हो सके। रात भर चिंता में पड़े हुए करवटें बदलते रहे। भैया की आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा। कई बार उन्हें ऐसा धोखा हुआ कि भैया द्वार पर खड़े रो रहे हैं। हाय बेचारे, प्रेमशंकर पर क्या बीत रही होगी। तंग, अंधेरी, दुर्गंध एक कोठरी में पड़ा होगा, आंखों में आंसू न थमते होंगे। इस वक्त उससे कुछ न खाया गया होगा। वहाँ के सिपाही और चौकीदार उसे दिख कर रहे होंगे। मालूम नहीं पुलिस वाले उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। न जाने उससे क्या कहलाना चाहते हो। इस विभाग में जाकर आदमी पशु हो जाता है। मेरा दयाशंकर पहले जैसा सुशील लड़का था, जब से पुलिस में गया है मिजाज ही और हो गया है। अपनी स्थिति तक की बात नहीं पूछता। अगर मुझ पर कोई मामला आ पड़े तो मुझसे बिना रिश्वत लिए न रहे। प्रेमशंकर पुलिस वालों की बातों में न आता होता होगा और वह सबके सब उसे और भी कष्ट दे रहे होंगे। भैया इस पर जान देते थे, कितना प्यार करते थे, और आज इसकी यह दशा। प्रातःकाल प्रभाशंकर फिर मजिस्ट्रेट के बंगले पर गए। मालूम हुआ कि साहब शिकार खेलने गए हैं। वहाँ से पुलिस के सुपरिटेंडेंट के पास गए। यह महाशय अभी निद्रा में मग्न थे। उनसे 10 बजे के पहले भेंट होने की संभावना न थी। बेचारे आंसू निराश हुए और तीसरे पार तक बे दाना पानी बेहान पानी हैरान परेशान इधर उधर दौड़ते रहे। कभी इस दफ्तर में जाते, कभी उस दफ्तर में। उन्हें आश्चर्य होता था कि दफ्तरों में छोटे कर्मचारी क्यों इतने बेमुरव्वत और निर्दय होते हैं। सीधी बात करनी दूर रही, खरी खोटी सुनाने में भी संकोच नहीं करते। अंत में 4 बजे मजिस्ट्रेट ने जमानत मंजूर की, लेकिन 1000-2000 की नहीं, पूरे 10,000 की, और वह भी नकद। प्रभाशंकर का दिल बैठ गया। एक बड़ी सांस लेकर वहाँ से उठे और धीरे धीरे चले। मानव शरीर निर्जीव हो गया। घर आकर वह चारपाई पर गिर पड़े सोचने लगे, 10,000 का प्रबंध कैसे करूँ? इतने रुपये मुझे विश्वास पर कौन देगा? तो क्या जायदाद रेहन पर रख दूँ? हाँ, इसके सिवा कोई उपाय नहीं, और घर वालों को किसी तरह राजी न होंगे, घर में लड़ाई ठन जाएगी। बहुत देर तक इसी ऐस बैस में पड़े रहे। भोजन का समय आ पहुँचा। बड़ी बहू बुलाने आई। प्रभाशंकर ने उनकी ओर से विनीत भाव से देख कर कहा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बड़ी बहू, कैसी भूख है जो लगती ही नहीं? कल रात नहीं खाया, दिन को नहीं खाया, कैसी चिंता में प्राण दे दोगे? इन्हें चिंता होनी चाहिए, जो उनका हिस्सा उड़ाते हैं उनके माथे पर तो बल तक नहीं है, और तुम दाना पानी छोड़े बैठे हो, अपने साथ घर के प्राणियों को भी भूखे मार रहे हो। प्रभाशंकर ने सजल नेत्र होकर कहा, क्या करो, मेरी तो भूख प्यास बंद सी हो गई है। कैसा सुशील, कितना कोमल प्रकृति, कितना शांतचित्त लड़का है, उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने फिर रही है। भोजन कैसे करूं? विदेश में था तो भूल गए थे, उसे खो बैठे थे, और खोए रत्न को पाने के बाद उसे चोरों के हाथ में देखकर सब्र नहीं होता। बड़ी बहू, लड़ता तो ऐसा है कि भगवान सबको दे। बिल्कुल वही लड़कपन का स्वभाव है, वही भोलापन, वही मीठी बातें, वही प्रेम, देखकर छाती फूल उठती है। घमंड तो छू तक नहीं गया, पर दाना पानी छोड़ देने से काम न चलेगा, चलो कुछ थोड़ा सा खा लो। प्रभाशंकर, 10,000 नगद जमानत मांगी गई। बड़ी बहू, ज्ञानों से कहते क्यों नहीं, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। प्रेम का आधा नफा क्या श्रद्धा के भोजन वस्त्रों में ही खर्च हो जाता है? प्रभाशंकर, उससे क्या कहूँ, सुने भी, वह पश्चिमी सभ्यता का मारा हुआ, जो लड़के को बालिक होते ही माता पिता से अलग कर देती है। उसने वह शिक्षा पाई जिसका मूल तत्व स्वार्थ है, उसमें दया विनय सौजन्य कुछ भी नहीं रहा, वह अब केवल अपनी इच्छाओं का, इंद्रियों का दास है। बड़ी बहू, तो तुम इतने रुपये का क्या बंदोबस्त करोगे? प्रभाशंकर, क्या कहूँ, किसी से ऋण लेना पड़ेगा। बड़ी बहू, ऐसा जान पड़ता है कि थोड़ा सा हिस्सा जो बचा हुआ है उसे भी अपने सामने ही ठिकाने लगा दोगे। यह तो कभी देखा नहीं कि जो रुपये एक बार लिए गए वह फिर दिए गए, बस जमीन के ही माथे जाती है। प्रभाशंकर, जमीन मेरी गुलाम है, मैं जमीन का गुलाम नहीं हूँ। बड़ी बहू, मैं कर्ज न लेने दूंगी, यानी कैसा पड़े कैसा ना पड़े, अंत में सब बोझ तो हमारे ही सिर पड़ेगा, लड़कों को कहीं बैठने का ठाँव भी न रहेगा। प्रभाशंकर ने पत्नी को कठोर दृष्टि से देख कर कहा, मैं तुमसे सलाह नहीं लेता हूँ, न तुमको इसका अधिकारी समझता हूँ। तुम उपकार को भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकता, मेरा खून सफ़ेद नहीं है। लड़कों की तकदीर में आराम लिखा होगा, आराम करेंगे, तकलीफ लिखी होगी, तकलीफ भोगेंगे, मैं उनकी तकदीर नहीं हूँ। आप दयाशंकर पर कोई बात आ पड़े तो गहने बेच डालने में भी किसी को इनकार न होगा, मैं प्रेमों को दयाशंकर से जौ भर भी कम नहीं समझता। बड़ी बहू ने फिर भोजन करने के लिए अनुरोध किया और प्रभाशंकर फिर नहीं नहीं करने लगे। अंत में उसने कहा, आज कद्दू के कबाब बने हैं, मैं जानती हूँ कि तुम न खाओगे तो क्यों बनवाती। प्रभाशंकर की दयाचिंता लुप्त हो गई, उत्सुक होकर बोले, किसने बनाए हैं? बड़ी बहू, बहू ने। प्रभा, अच्छा तो थाली परसाओ, भूख तो नहीं है, पर दो चार कौर खा ही लूँगा।